ओम शांति। सभी प्यार से कहें ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यह ओम शांति करते करते हम सभी अपने प्यारे मधुवन में पहुंच गए। कोई प्लेन से आए होंगे, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई अपने साधनों से। बाकी ईस्टर्न जोन तो वैसे ही काफी डिस्टेंस है सभी का। हर एक को 3 दिन 4 दिन लग ही जाते हैं। तो हम सब इसी बात से खुश होते हैं कि हम अपने प्यारे मधुवन में बाप दादा के घर पहुंच गए। रास्ते की सफर की जो भी सफरिंग है, जो भी थकावट हो, तकलीफ हो, कोई भी बात हो, तो जैसे ही मधुवन की गेट में हम घुसते हैं तो हमारी सारी क्लांति दूर हो जाती है। सभी का ऐसा अनुभव है ना? हाँ, मधुवन का गेट ही हमको सब तकलीफों से मुक्त कर देता है। रिजर्वेशन की असुविधा हो, बैठने सोने की असुविधा हो, खाने पीने की असुविधा हो, लेकिन यहाँ आते ही सभी असुविधाएं समाप्त हो जाती हैं और हम अपने अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं। यज्ञ का कणा दाना खाकर फिर से अपने को वैसे ही हुष्ट पुष्ट समझने लगते हैं। यह है मधुवन की सबसे बड़ी विशेषता। यहां से जाने के बाद कईयों को ये संकल्प आता है और नेक्स्ट ईयर नहीं जाएंगे। इतना तकलीफ, इतना जर्नी करके कौन जाए? लेकिन जैसे ही समय नजदीक आता है, बाबा के प्रोग्राम पहुंचते हैं, फिर से दिल में एक उमंग आ जाता है कि अब हमको फिर से अपने घर जाना है। कई बार मैं ये देखती हूँ क्लास में आने वाले बाबा के बच्चे अपनी नौकरी के कारण कितनी भी दूर रहते हों, लेकिन अगर 1-2 दिन की भी छुट्टी मिलती है तो कहते हैं बहन जी 2 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? गांव जाना है। उड़ीसा में कहते हैं हमको गांव जाना है। अरे 2 दिन की छुट्टी, आपको तो जाने में सारी रात लगेगी, बस में इतना तकलीफ सहन करते हुए जाएंगे। नहीं, थोड़ा परिवार है ना, दायित्व तो है ना, इसलिए जाने से अच्छा रहेगा। अच्छा भाई, आपका परिवार है, आपको देखना है, आपको चलाना है, जाओ। और जिस दिन वो बस से पहुंचेंगे, सारी रात का सफर करके 8 बजे 9 बजे पहुंचेंगे, 10 बजे अपने ऑफिस में हाजिर। तो अपना घर, कहने का भाव ये है कि अपना घर कितना प्यारा है। हम ब्राह्मणों का एड्रेस क्या है? कोई आसाम से आए, कोई उड़ीसा से आए, कोई पटना बिहार से आए, कोई बंगाल से आए, लेकिन सभी ब्राह्मणों का एड्रेस ये मधुवन है। सबका घर मधुवन है और मधुवन में हमें जितना अपनेपन का अनुभव होता है वो अपने घर में भी नहीं होता। क्या अनुभव करते हैं? यहां जब देखते हैं हमारा इतना बड़ा परिवार, लौकिक घर में सभी का परिचय होते हुए भी अगर कोई बात हुई तो मुख मोड़ना, नजरें चुराना, एक दूसरे से मिलना, और कई बार तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई किसी को जानता ही नहीं है। लेकिन जब यहां आते हैं, भले हम किसी को पहचानते नहीं हैं, परिचय नहीं है, लेकिन फिर भी हम यही महसूस करते हैं कि ये सब हमारे अपने हैं। तो हमारी दृष्टिकोण में कितना फर्क आ जाता है। न जानते हुए अपने हैं और जानते हुए कभी कभी वो पराये जैसे भी हो जाते हैं। तो ये भी हमारे अपने इस घर की बहुत बड़ी विशेषता है कि हम अपने घर में आए हैं और जब अपनापन महसूस होता है तो इस घर के लिए अपनी जो कुर्बानी है, हम सभी जो भी आते हैं तन से, मन से, धन से, समय संकल्प से, हम सेवा में अपनी कुर्बानी देते हैं। दुनिया में लोग सेवा करते हैं, कहीं भोजन बनाने का, जैसे शादी ब्याह होता है, महाराज को बुलाते हैं खाना बनाने के लिए, तो वो भी तो कुछ लेता है ना, उसको पैसा ठीक किया जाता है, इतना पैसा आप लेंगे और भोजन बनाएंगे, लोग खाएंगे। हाँ, नाम भी कितना अच्छा है, भोजन बनाने वाले को महाराज कहा जाता है। लेकिन यहां पर जो ब्राह्मण बच्चे सेवा करते हैं वो कितना पैसा लेते हैं? लेते हैं कुछ? हाँ, जिनकी जो भी सेवा होगी, भले पार्टी में आए होंगे या सेवाधारी के रूप से आए होंगे, लेकिन कितना पैसा लेते होंगे? हम यहाँ अपना दान करते हैं, हम यहाँ अपना समर्पण करते हैं और तन से हम कर सेवा भी करते हैं। तो ऐसी विशेष बात किसी भी संस्था के अंदर नहीं दिखाई देती। एक बार दलाई लामा जी आए थे, जो तिब्बतियों के गुरु माने जाते हैं, और उन्होंने जब यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स को देखा, उस समय हमारी बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी थी, और सब देखते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग सेवा कर रहे हैं किसी के चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं है। चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, मन के अंदर कोई ख्याल नहीं है, लेकिन हर एक का चेहरा इतना खुशनुमा है, इतना हर्षित चेहरे से वो सेवा कर रहे हैं, ये देखने योग्य है, सीखने योग्य है। हमारे यहाँ तो जो भोजन बनाने वाले हैं रोज लड़ते हैं, जिनको जो कार्य मिला हुआ है तो आपस में अनबन हो जाती है उनकी। मैं अपने ग्रुप को यहाँ भेजूंगा और आप उन्हें ट्रेनिंग देंगे कि सेवा कैसे होती है। तो किस तरह से हमारी स्थिति के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा सेवाएं होती हैं। हम धन भी लगाते हैं, मन भी लगाते हैं, तन भी लगाते हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है? अपार खुशी, संतुष्टता कि हमें भगवान के घर में सेवा करने का मौका मिला। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने मुरली चलाई थी, जिसमें बाबा ने कहा था कि बच्चे आप सभी अपने सेवा केंद्रों पर जो कार्य करते हो, सेवा करते हो, यज्ञ सेवा करते हो, वह अपना पुण्य कमाते हो, लेकिन जब तुम बच्चे महायज्ञ की सेवा करते हो तो महापुण्य बनता है, महापुण्य की कमाई होती है। तो प्रति वर्ष हम सभी को जो भी सेवा का कार्य मिलता है, प्राप्त होता है, तो हम कितने महापुण्य का खाता जमा करते हैं, कितने दिल से करते हैं, कितने प्यार से करते हैं, कितना अपनापन की भावना के आधार से करते हैं। तो उस सेवा की जो संतुष्टता हमें प्राप्त होती है, जो खुशी हमें प्राप्त होती है, वो पुनः बार बार मधुबन आने को हमें प्रेरित करता रहता है। हमने जो किया और वो करना ही हमारे को प्रेरित करता है कि बच्चे समय पूरा हो गया, अब चलो फिर मधुबन। नेताओं का कोई भी कार्य होता है तो क्या होता है, चलो दिल्ली, चलो अमुक जगह, कितने बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं और सब भाग भाग करके आते हैं कि नहीं। भले वो अपनी तरफ से वो जो भी करते हैं, लेकिन चलो दिल्ली, चाहे कृषि विभाग वाले हों, चाहे जो भी विभाग वाले हों, लोग पहुंचते हैं। बाबा का घर, बाबा का ये मधुबन हमें बार बार प्रेरित करता है, चलो मधुबन, चलो मधुबन। जहां दो चार मास बीतते हैं तो मन के अंदर आने लगता है कि अब हमें मधुबन जाना है, मधुबन जाना है। कारण, क्योंकि मधुबन में ही मधुसूदन मिलेगा। भगवान ने मुरली कहाँ बजाई, कहाँ बजाई? मधुबन में बजाई ना। भाग भाग करके आने वाले गोप गोपियां अपना सारा कारोबार छोड़ छाड़ करके घर को बिना समेटे अपने आप को बिना सजे सजाए अवस्था में जैसे तैसे अवस्था में तन और मन की सुध-बुध नहीं होती थी और वह मुरली सुनने के लिए पहुंच जाते थे। तो मधुबन में ही हमें बाबा मिलता है, बाबा की मुरली मिलती है, महावाक्य मिलता है और मेरा इतना बड़ा परिवार है वो परिवार भी देखने को मिलता है और उसे देख देख करके हम हर्षित होते हैं। हम छोटे मोटे परिवार वाले नहीं हैं, जिनका बड़ा परिवार होता है और जब सब किसी मौके पर इकट्ठे होते हैं तो वो कितने खुश होते हैं, आपस में कितनी खुशी से मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं, खुशियां मनाते हैं। हमारा तो परिवार इतना बड़ा है जो एक एक से मिल नहीं सकते लेकिन अपने वाइब्रेशन का आदान प्रदान तो कर सकते हैं ना। हमारा खुशी का वाइब्रेशन दूसरे के पास पहुंचता है, दूसरे का हमारे के पास पहुंचता है, कोई किसी को नहीं जानता सिवाय अपने एरिया के भाई बहनों को, लेकिन मेरा इतना बड़ा परिवार है इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। जहां स्वयं बाबा मिलता है, बाप दादा हमें दोनों ही मिलते हैं इतने बड़े परिवार के साथ और उनके महावाक्यों के साथ, जो महावाक्य हमारे जीवन को इतने ऊंच बनाते हैं, जो दुनिया के आगे एक आदर्श के रूप से औरों के सामने एक तरह से साक्षात्कार मूर्त बना करके बाबा हमें रखता है। जो भी लोग बाहर के लोग देखते हैं वो कहते हैं आप लोग के चेहरे पर इतनी शांति कैसे है, आपके चेहरे पर इतनी खुशी प्रसन्नता कैसे है, हम लोग तो इतना अपनी खुशी के लिए इतना सब कुछ करते हैं लेकिन वो खुशी जो इंटरनल खुशी हमें मिलनी चाहिए वो नहीं प्राप्त होती है। लेकिन आपको क्या मिलता है, आप तो कुछ ऐसे साधनों को भी नहीं अपनाते हैं, आप तो उसके लिए कुछ करते भी नहीं हैं। किस आधार से आप इतने प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, तो हम क्या कहेंगे। नयों को तो हम कहते हैं हम राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं लेकिन इंटरनल हम जानते हैं कि हमको क्या मिला है, हमें क्या प्राप्ति हुई है। सबसे बड़ी चीज हमें प्राप्त हुई क्या, बाप दादा शिव बाबा, बाबा जैसी प्राप्ति, हाँ, जिसके लिए दुनिया ने हजारों हजारों वर्ष तक जो कहा जाता है तपस्याएं की, इतनी तपस्या की जो उनके ऊपर वो दीमक भी चढ़ जाते थे, माटी का वो भी बन जाता था और वो अंदर ही अंदर जाप करते रहते थे। हमें तो ऐसा भी नहीं करना पड़ा, हम क्या करते हैं, अंदर ही से ही हम महसूस करते हैं कि हमें मिला कौन है, बाबा मिला। हमने पाया क्या, बाबा को पाया। हमें प्राप्ति क्या हुई? बाबा की प्राप्ति हुई। सब कुछ बाबा, हमारा संबंध जुड़ा किससे? बाबा से। हमें जो कुछ भी मिल रहा है किससे? बाबा से। आज हमारी दीदी दादियां कहती हैं, कैसे हमारे इतने वर्ष, जब गोल्डन जुबली 60 वर्ष का मनाया गया था, तो दादियां जब आपस में मिल रही थी यहाँ ही स्टेज पर, पता ही नहीं पड़ा कैसे हमारे 60 वर्ष बीत गए। तो किसी दादी ने कहा, अरे बाबा बाबा करते बीत गए। तो सभी के मुख से बाबा बाबा बाबा। अगर बाबा ना होता तो हमारा ये जीवन अब तक इतना लास्टिंग नहीं करता, क्योंकि दुनिया की रंग रंगीली दुनिया में कितनी रौनक है, कितना आकर्षण है, कितना सब कुछ है, लेकिन बाबा ने हमारे इस जीवन को इतना सिंपल रीति से, इतनी सरलता सहित ऐसा तैयार किया जो और उस दुनिया के आकर्षण से हम ऑटोमेटिक मुक्त होते गए। और हमें उस प्राप्ति की इतनी खुशी, एक बार बाबा ने कहा था, बच्चे आप जैसा साहूकार इस संसार में, इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। हम साहूकार कैसे हुए? तुम बच्चों जैसा साहूकार इस संसार में कोई भी नहीं है। बाबा ने कहा कि आपने अपने दिल के सोने की डिब्बी में, दिल जो है आपका वो सोने की डिब्बी है, और इस डिब्बी के अंदर बाबा जो बहुमूल्य हीरा है उसको आपने छिपा के रखा है। उससे ज्यादा कॉस्ट और कोई भी हीरे का नहीं है। तो आप बच्चे कितने साहूकार हो गए? महारानी एलिजाबेथ के मुकुट में भी जो कोहिनूर हीरा लगा हुआ है उससे भी ज्यादा कॉस्ट तो बाबा का है ना, क्योंकि वो भी तो जाने अनजाने किसी न किसी रूप से बाबा को याद करती है ना, गॉड के रूप से याद तो करती है ना, कोई भगवान के रूप से याद करता है, कोई परमात्मा के रूप से याद करता है, कर तो रहे हैं। लेकिन तुम बच्चों ने जो प्राप्ति की है वो प्राप्ति उनको इतनी अनुभूति में नहीं आती। और इस जीवन को संवारने वाला, बाबा के मुख से निकलने वाले जो महावाक्य हैं, वो आधार बनते हैं। आज मुझे भी 50 वर्ष इधर बाबा का अव्यक्त होना और इधर मैं भी इस यज्ञ में समर्पित हुई, बचपन से तो संसर्ग में रही लेकिन सेवा केंद्र पर रहने का जो चांस मिला वो तभी से ही, मैं भी कई बार ये सोचती हूँ ये 50 वर्ष कैसे बीत गए। बस बाबा और मुरली, क्योंकि हमारे जीवन को संवारने वाला मुरली है। बाबा के मुख से निःसृत वाणी हमारे को संवार देती है। बाबा कहता है, बच्चे मैं तुमको कितना श्रृंगार करता हूँ, रोज तुम्हारा 16 श्रृंगार करता हूँ, ऊपर से लेकर के चरण तक तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ। भक्ति मार्ग में हाँ मूर्ति को कितना श्रृंगार करते हैं, डेली अलग अलग ड्रेस पहनाते, अलग अलग फूल मालाएं ये वो सब करते। मैं तुम बच्चों को, क्योंकि तुम बच्चे भी होवनहार देवी देवताएं हो, तो तुम्हारा भी मैं प्रतिदिन सुबह सुबह श्रृंगार करता हूँ। तो भगवान जो अपने हाथों से अपने ही मुख निश्रित वाणी से हमारा श्रृंगार करता है, ये कोई कम सौभाग्य की बात है? हम तो बहुत साधारण शब्दों में कह देते हैं, हमको चुनने वाला कौन? बाबा ने हमें चुना है। इतने लाखों करोड़ों करोड़ों की संख्या के बीच में बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को चुना, तो हमको सेलेक्ट करने वाला भी कौन है? दुनिया में इलेक्शन चलता है और यहाँ सेलेक्शन चलता है। भगवान ने हमें सेलेक्ट किया, हम भगवान के बने। भगवान अभी हमें प्रतिदिन श्रृंगार करता है होवनहार देवी देवताओं के रूप से। इससे बड़ा सौभाग्य और हमें क्या चाहिए? रोज बाबा हमें माजून खिलाता है। हम सभी बाबा की जीवन कहानी में सुनते आए हैं कि रात को बाबा 2 बजे उठकर, हाँ जब भी उनके रूम में कोई जाए और देखे तो सब यही देखते थे कि बाबा बैठकर योग कर रहा है। कई बार दादियां पूछ लेती थी, बाबा क्या कर रहे हो? मैं बच्चों के लिए गरम गरम हलवा तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब क्लास में जाऊंगा तो बच्चे एक आश लिए बैठे होंगे कि अभी बाबा आएगा और हमें गरम गरम हलवा खिलाएगा। अर्थात मुरली, गरम गरम हलवा। और ये हलवा बनाने का काम ब्रह्मा माँ का है। ब्रह्मा तो वो भी हमारी माँ है ना, जिसने हम सबको मुख वंशावली के रूप से जन्म दिया। तो बच्चों की पालना कौन करेगा? माँ ही करेगी ना। सुबह से लेकर रात तक बच्चे के पीछे दौड़ते रहना, भागते रहना, अपना नींद भूख प्यास भूल करके उनके पीछे ही पड़े रहना, तो मैं भी माँ हूँ। और मैं शुरू से ही, माना सुबह होते ही मैं बच्चों को गरम गरम हलवा खिलाऊंगा तो मेरे बच्चे हुष्ट पुष्ट होंगे, उनकी आत्मा बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। कभी बाबा कहता था, बच्चे मैं माजून तैयार कर रहा हूँ। माजून की टोली कभी कभी बाबा को मधुबन में यहाँ मिलती है, जिसमें सारे ड्राई फ्रूट मिक्स करके वो बर्फी तैयार की जाती है। माना शक्तिशाली पौष्टिक खाने वाली चीज जिससे शरीर पूरा हुष्ट पुष्ट बने। तो कभी बाबा कहता था कि मैं माजून तैयार कर रहा हूं। अभी अभी कुछ दिन की मुरली में था कि बाबा मुख से मुरली चलाता है, अगर ये मुख भी कभी कभी काम नहीं करता तो सिर्फ बाबा इसके द्वारा मुरली लिख करके भी बच्चों के पास भेजता है। और ऐसा पहले हुआ करता था, कभी बाबा का शरीर अस्वस्थ रहा, हॉस्पिटल में रहे तो बाबा मुरली लिख करके भेजता था। तो बच्चे कहते थे, बाबा आप लिखते क्यों हो, आप बताओ, मम्मा सुना देगी। बाबा कहता था, नहीं, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मैं खुद तैयार करके भेजूंगा। फिर मम्मा उसे पढ़ती थी और फिर सभी बच्चों को सुनाया करती थी। तो ये सारे नजारे जो इन नेत्रों ने देखे हैं, सुने तो बहुतों ने हैं, हम लोगों भी बहुत बार देखी नहीं, दादी दीदियों से ही हम सभी सुनते आए हैं, लेकिन ये सब चीजें जो अपनी आंखों से देखा तो ऑटोमेटिक बाबा के प्रति तो प्यार उमड़ेगा ना, कि मेरा बाबा कितना अच्छा है जो बच्चों के प्रति कितना ध्यान रखता है। हम कई बार सोचते हैं, चलो आज नहीं गए क्लास में तो क्या हुआ, दो तीन दिन नहीं गए तो क्या हुआ, बाबा तो वही रोज बोलता है ना, क्या अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा की मुख्य बात तो यही है, दैवी गुण धारण करो, क्रोध नहीं करो, यही तो बातें बाबा बोलता है। हम हल्के हो जाते हैं कई बार मुरली सुनने में, क्लास में जाने में, लेकिन बाबा कभी भी अपने बच्चों के प्रति हल्का नहीं हुआ। अंत तक भी हम सभी ये जानते हैं कि बाबा अंतिम दिन भी जितने भी बच्चों के पत्र आए हुए थे सभी पत्रों को सुना और उसका जवाब दिया, कोई भी बाकी नहीं रहा। हम लोग के पास भी बाबा का लिखा हुआ पत्र आता था लाल पेंसिल से, और ईशु दादी उस पर हिंदी लिख देती थी कि बाबा ने क्या लिखा है। वो दो चार लाइन का पत्र पढ़ के ही इतनी खुशी होती थी कि देखो बाबा अपने हाथ से लिख करके बच्चों को पत्र का उत्तर देता है। होगा ऐसा कोई संसार में बाप? होगा ऐसा बाप जो प्रतिदिन मुरली सुनाए, मन को मोहने वाली बात सुनाए, मन का परिवर्तन करने वाला बात सुनाए? सुबह सुबह बच्चे रोते हैं, करते हैं, लगाते हैं दो चार थप्पड़, चुप चुप करो, वो और करता है। लेकिन सिर्फ बाबा ने, बाप दादा ने क्या किया, हमको सुबह उठते ही हंसना सिखाया, खुशी में रहना सिखाया, देवी देवताओं के जीवन की प्रथम जो भी हम देखते हैं चित्रों में उनका मुख सदा हर्षित है, हर्षित रहना सिखाया। बच्चे रोएंगे कहां से? कितना फर्क हम महसूस करते हैं उस लाइफ का और इस लाइफ का। एक बार बाबा ने कहा था कि बच्चे हंस मुख बनो। हंस मुख माना एक तो हर्षित पना, हर्ष हो आपके चेहरे पर, चित्त प्रसन्न होगा, अंदर से आप प्रसन्न रहेंगे तो वो खुशी वो प्रसन्नता आपके चेहरों पर आपके नेत्रों से पूरे मुख मंडल से दिखाई देगी। और एक हंस मुख हंस के समान बनना, हंस अच्छाइयों को ग्रहण करता है, बुराइयों का त्याग करता है, मोती चूग लेता है पत्थर छोड़ देता है, चावल खा लेता है उसके कंकड़ को छोड़ देता है, दूध पी लेता है पानी छोड़ देता है, तो उसके अंदर भी कितनी कैपेसिटी है अच्छाइयों को ग्रहण करने का। बाबा ने कहा बच्चे आप सब होली हंस हो, खाली हंस की उपाधि नहीं दी, होली हंस हो। होली हंस पवित्र भी बनो और हंस समान तुम्हारी बुद्धि भी हो, अच्छी चीजों को ग्रहण करना और बुराइयों का त्याग करना। अवगुण को त्याग करो, अब गुणों को धारण करो। अवगुण को थोड़ा अलग अलग कर दें तो क्या होगा, अब गुण धारण करो। तो बाबा ने ये जो पॉजिटिव बातें हमको बार बार सिखलाई, बच्चे गुण को धारण करो, गुण को धारण करो, तो स्वतः ही अवगुण साइड होते गए। अगर हम स्वयं को दर्पण के सामने खड़े करके अपनी अच्छाई और बुराइयों को दो साइड देखेंगे तो पता पड़ेगा कि बाबा ने हमारे जीवन को कितना सुंदर बना दिया, कितना अच्छा बना दिया, कितना रूहानी बना दिया, जो लोग देखते हुए भी पूछते हैं कि जरूर आप लोगों में कोई कौन सी शक्ति है। अभी अभी दादी नवंबर मास लास्ट में नवरंगपुर जाना हुआ और दादी जी को स्टेट गेस्ट के रूप से रखा गया, तो वहां के कलेक्टर एसपी ये सब हर समय हर कार्यक्रम के टाइम उनकी प्रेजेंस। लेकिन मैंने ये देखा कि दादी जी का जो वाइब्रेशन, दादी जी की दृष्टि, दादी जी के बोल उन लोगों को इतना भाया, जो वहां के कलेक्टर ने कहा कि मुझे किसी ने कहा था बस आप दादी को देखना, मैं बस दादी को देखता रहा और जैसे ही दादी के साथ मेरी दृष्टि मिली मैं तो एकदम जैसे करंट लगता है ना तो कैसे हो जाते हैं, तो मुझे इतनी पावर की अनुभूति हुई जो बात मत पूछो। उसने अपने अनुभव में सुनाया स्टेज पर। जो एसपी थे उनका एक छोटा बच्चा 3-4 मास का होगा, वो दादी के पास उनको ले आया, दादी इसको आशीर्वाद दो। अरे पहले तुम तो लो। नहीं मैंने ले लिया, अब इसको आशीर्वाद, बच्चे गुड्डे को भी दो। कितनी भावना उनके मन के अंदर आ गई। तो बाबा कहते हैं ना बच्चे मैं तो मूर्तिकार हूँ, मैं तुम्हारी मूर्ति को तैयार कर रहा हूँ, आँख नाक कान सब बना रहा हूँ, इसे कभी भी खंडित होने नहीं देना और सदा ही अपनी स्मृति में ये रखना कि मैं होवनहार देवी देवता हूँ। अगर ये स्मृति रहेगी तो स्वतः ही हमारे अंदर दैवी गुण धारण होते जाएंगे, अच्छे अच्छे गुण आते जाएंगे। हमें किसी को देखना नहीं है, सिर्फ अपने आप को ज्ञान दर्पण में देखते रहना है। लक्ष्मी नारायण जी का पिक्चर सामने में है, उनके सामने खड़े हो जाओ और उसमें अपने आप को देखो, मैं इनके जैसा बना, इनकी तरह मेरी सूरत है, इनकी तरह मेरे गुण हैं, इनकी तरह मेरे कर्म हैं। ये साक्षात उस दर्पण में, ये भी एक दर्पण है, इस दर्पण में अपने आप को देखो तो स्वतः ही बन जाएंगे। तो ये बाबा की ही कमाल है और हमें भी ब्रह्मा बाबा और मम्मा के संसर्ग में, संपर्क में रहने का थोड़ा बहुत जो मौका मिला तो मैं अपने आप को भी बहुत धन्य समझती हूँ। आप सभी से ने भी कईयों ने बाबा मम्मा को देखा होगा, उनकी बातें सुनी होंगी, उनकी जीवन कहानी के माध्यम से भी बहुत कुछ जानकारी पाई होगी, तो उसमें भी सभी का सौभाग्य समाया हुआ है और हम अपने जीवन को धन्य बनाते जा रहे हैं उन्हीं सब बातों के आधार से। और मधुवन तो हमारा जो रियल एड्रेस है, अपने घर में आकर के हम पूरा रिफ्रेश होकर के, पूरा हष्ट पुष्ट होकर के यहाँ से जाते हैं, तो ये भी हम सबका बहुत बहुत सौभाग्य है। अच्छा, ओम शांति।